आठवां चैप्टर भारतीय इतिहास लेखन डैश एक परिचय। दीर्घकाल से अधिकांश विद्वानों में यह धारणा प्रचलित रही है कि विविध कारणों से प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के प्रति उदासीन रहे हैं। जहां कुछ ने इस मान्यता को भारतीय जलवायु तथा भौगोलिक परिवेश के आधार पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य विद्वानों ने भारतीय धार्मिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया है। किंतु अब इस मान्यता का धीरे धीरे निराश होने लगा है, जिसको सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत अध्याय के में एक के वाल्डर की कृति एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्टोरियोग्राफी बम्बई 1972 का समीक्षात्मक सार संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक के द्वारा भारतीय इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ भारतीय इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का प्रकाशन भी अभीष्ट है। प्रस्तुत पुस्तक की वस्तु सामग्री तिथि क्रम के अनुरूप है। अनिर्वहनीय भार से बचने के लिए महत्वपूर्ण होने पर भी अभिलेखिक इतिहास लेखन को वर्तमान अध्ययन से बाहर रखा गया है। प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने मूल भारतीय ऐतिहासिक कृतियों के माध्यम से इतिहास लेखन के विकास का प्रकाशन किया है। प्रस्तुत पुस्तक 7 की वस्तु सामग्री अंशतः तिथि क्रम के अनुरूप है, किंतु आगे चलकर यह विशेष रूपेण इस कारण कि मध्य युग में स्वयं इतिहास लेखन क्षेत्र संबंध हो गई है। अनिर्वहनीय भार से बचने के लिए महत्वपूर्ण होने पर भी अभिलेखिक इतिहास लेखन को वर्तमान अध्ययन से बाहर रखा गया है। प्राचीन भारतीय सभ्यता का परिचय। भारत, चीन तथा निकट पूर्व की सभ्यताएं साधारण दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित हुई। भारत में सभ्यता का प्राकट्य सिंधु घाटी में हुआ और शीघ्र ही गंगा की ऊपरी घाटी तथा गुजरात से होती हुई यह दक्षिण तक फैल गई। आर्य जाति, जिसने 1600 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया, क्रमशः मूल भारतीयों के साथ एकाकार हो गई। इस जाति ने लगभग 1000 ईसा पूर्व के अनंतर लौह युग में गंगा के जंगलों को काटकर साफ किया और उसके बाद क्रमशः सुदूर दक्षिण तक के प्रदेश को अपनी संस्कृति से प्रभावित किया। मध्य एशिया के पश्चिम भाग में वंशु की उत्पत्तिका में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में भारतीयों का ईरानियों से संपर्क स्थापित हुआ। संभवतः दोनों ही ईरानी और आर्य एक ही जाति के थे। ऐसा लगता है कि आर्यों के भारत में प्रवेश के पश्चात ईरानी सभ्यता का वंशु उत्पत्तिका में विकास हुआ। उनका धर्म भारतीय धर्म के पर्याप्त निकट था। भारत, चीन तथा ईरान में ज्ञान की समान अनियंत्रित जिज्ञासा तथा सहिष्णुता की भावना की प्रवृत्ति व्यापक रूप में विद्यमान थी। वर्तमान में भारतीय ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझना सरल नहीं है, क्योंकि 3000 ईसा पूर्व सभ्यता के उदय से आज तक 5000 वर्षों का एक दृष्टि में पर्यावलोकन आसान नहीं है। समय के इस विस्तार के कारण कुछ यूरोपीय लेखकों ने भारतीय इतिहास के महत्व को घटाकर देखने का प्रयत्न किया है, जबकि भारतीय इतिहास के प्रायः सभी कालखंडों को प्रत्यक्ष करने वाली साहित्य, कला तथा दर्शन की एक संपन्न सांस्कृतिक निधि विद्यमान है, जिसमें अध्ययन से भारतीय सभ्यता का सतत वैशिष्ट्य प्रकट होता है। ऐतिहासिक तिथि क्रम की संक्षिप्त रूपरेखा से इस तथ्य को आत्मसात किया जा सकता है। यूरोपीय की भारतीय संस्कृति की आलोचना उनके साम्राज्यवादी विचार से उत्प्रेरित थी। उपनिवेशवादी परिवेश में ब्रिटिश लोगों को स्वयं भारतीयों से श्रेष्ठतर सिद्ध करना आवश्यक था। उनके द्वारा भारतीय सभ्यता के सातत्य और दर्शन को हीन दृष्टि से देखा गया। भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वालों को इस धारणा का खंडन करना चाहिए। सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में भारतीय परंपराएं, ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनों परंपराएं संसार तथा समाज के चक्रीय विकास प्रक्रिया को स्वीकार करती हैं। किसी अति मानवीय सत्ता में विश्वास न होने के कारण बौद्ध इसको स्वीकार करती हैं। किसी अति मानवीय सत्ता में विश्वास न होने के कारण बौद्ध इस विकास प्रक्रिया को स्वतः विकासमान मानते हैं। प्रारंभ में जिस प्रकार की सामाजिक जटिलता नहीं थी और सभी किसी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, नैतिक अथवा राजनैतिक विचारों से सर्वथा मुक्त रहते हुए प्रकृति प्रदत्त भोजन से संतुष्ट जीवन यापन करते थे, इस आदर्श व्यवस्था का पतन उस समय से प्रारंभ हुआ जब किसी के मस्तिष्क में खाद्य पदार्थों के संग्रह का विचार उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे जटिलताएं बढ़ती गई और उनके समाधान के लिए नए नए नियम और नई नई संस्थाएं बनती गई। इस समय तक लोग कृषि कर्म से परिचित हो गए थे तथा कृषि योग्य भूमि का बंटवारा एक अनजटिल प्रश्न था। सभ्यता की उत्पत्ति विषयक यह विचार प्रागैतिहासिक समाज के विकास विषयक आधुनिक मतों से सर्वथा संगत दिखाई पड़ता है। यह सच है कि इसे बौद्धिक नैतिक अवधारणाओं के आधार पर व्याख्यायित किया गया है। इस परंपरा का ब्राह्मण रूप थोड़ा भिन्न है। प्रारंभिक न्यायपूर्ण समाज के पतन को चार युगों कृत, त्रेता, द्वापर और कली से संबंध किया गया है। विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों, मुख्यतः महाभारत तथा पुराणों में उद्धृत परंपराएं प्रायः एक दूसरे से पूर्ण संगत नहीं दिखाई पड़ती। महाभारत के अनुसार पहले राज का अस्तित्व नहीं था, किंतु कालांतर में मनुष्यों में पारस्परिक द्वेष तथा लोभ का जन्म हुआ, जिसके कारण ब्रह्मा ने राज के और सम्यक प्रशासन के उद्देश्य से इसके साथ ही वेद, दर्शन, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का भी प्रणयन किया। पुराणों में मौलिक परंपरा यह दिखाई पड़ती है कि समाज का यह विकार तथा तदप्रसूत विभाजन कृत युग के पश्चात त्रेता युग में हुआ। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में इसका समर्थन होता दिखाई पड़ता है। वायु पुराण के इस विषय पर विस्तार पूर्ण विचार मिलता है, जो बौद्ध परंपरा से संगत है। इससे पहले खाद्य पदार्थ के संग्रह की अवस्था से कृषि अवस्था की प्राप्ति की चर्चा है। त्रेता युग में कृषि के विकास के साथ दूसरों की संपत्ति के अपहरण की समस्या उत्पन्न हुई, जिस पर ब्रह्मा ने समाज का विभाजन किया और क्षत्रियों को शासन कर्म के लिए नियुक्त किया। कालांतर में विविध परिवर्तनों तथा परिवर्धनों के परिणाम स्वरूप इस परंपरा में बहुत सी नई बातें जुड़ गई। वैदिक इतिहास लेखन। ऋग्वेद संहिता वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसकी रचना संभवतः 1500 तथा 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई। यद्यपि इसमें कुछ समसामयिक ऐतिहासिक रचनाओं का उल्लेख हुआ है तथा कुछ ऐतिहासिक महत्व के भाग इसमें सन्निविष्ट हैं, तथापि यह मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ है तथा स्वतंत्र ऐतिहासिक रचनाएं इसमें अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं मिलती। ऋग्वेद संहिता के कुछ मंत्रों में आर्यों द्वारा भारत विजय की परंपरा का संकेत मिलता है। इनमें इंद्र गाथाओं का विशेष महत्व है। अनमानवीय जननायकों से संबंध गाथाएं भी हैं, जिनका विभिन्न अनुष्ठात्मक अवसरों पर संज्ञान किया जाता था। इंद्र से संबंध गाथाएं महाकाव्य शैली में हैं और यह स्पष्ट है कि अत्यंत प्राचीन काल से राजनीतिक घटनाओं से संबंध मौलिक परंपराओं का एक विशाल संग्रह विद्यमान था। कुछ गाथाओं को नाराशंसी मनुष्यों की प्रशंसा में कहा गया है। वैदिक साहित्य में आख्यान तथा इतिहास पुराण भी मिलते हैं, जो अधिकांशतः गद्य में हैं, किंतु कुछ पद्य रूप में भी हैं। इतिहास एवं पुराण का सार्वभौमिक इतिहास। परिवर्ती वैदिक ग्रंथों में इतिहास तथा पुराण का उल्लेख पंचम वेद के रूप में हुआ है। परवर्ती काल में इतिहास शब्द का प्रयोग पर्याप्त व्यापक हो गया है तथा इसमें सभी प्राचीन ऐतिहासिक परंपराओं का समावेश किया जाने लगा। पुराण भी इस शब्द में सन्निविष्ट हो गए। मूल पुराण संभवतः एक ही ग्रंथ था, जिसमें प्राचीन राजाओं से संबद्ध सभी विवरण तथा कथाएँ संग्रहित थी। इसका संकलन संभवतः 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व एवं लूम हर्षन द्वारा किया गया, अथवा उन्होंने इसे व्यास से प्राप्त किया, जो लगभग एक शताब्दी पूर्व रहे होंगे। पुराणों से इतर इतिहास में हमें भारत आख्यान, जिसे कालांतर में महाभारत नाम दिया गया, की परंपराएं प्राप्त होती है, जिसमें पूर्वोल्लिखित व्यास से संबंध किया गया है। यह भारत अथवा पौरव शासन वंश के गृह युद्ध का विवरण है। युद्ध संभवतः 950 से 900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। बीच बीच में इसमें अन्य कई आख्यानों को रखा गया है। संभवतः इन्हें ही पुराण से पृथक इतिहास के रूप में जाना जाता था, किंतु कौटिल्य ने इतिहास को साहित्य के एक विशिष्ट वर्ग के रूप में लिया है, जिसमें पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, अधर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र सभी का समावेश होता था। राजकीय वंशावलियों के निरूपण तथा ऐतिहासिक जननायकों की प्रशंसा में गीतों के संकलन का कार्य सूत किया गया था। यह पद ब्राह्मणों तथा अधिगत रहा प्रतीत होता है तथा कुछ स्रोत इन्हें भार्गव, भारद्वाज तथा कश्यप पुरोहितों कुलों से संबंधित करते हैं। इनमें विशेष रूप से भार्गव कुल इतिहास लेखन के साथ विशिष्ट रूपेण संबद्ध दिखाई पड़ता है। इस क्षेत्र में भार्गवों के योगदान की पाठक की पुस्तक में विस्तारपूर्ण चर्चा मिलती है। भारत परंपरा को भी कालांतर में भार्गवों ने अपना लिया। भार्गव और आंगिरस कुलों ने मिलकर भार्गवांगिरस परंपरा का निर्माण किया और पौरव शासन वंश के समय के मगध साम्राज्य के उदय का भार्गवांगिरस इतिहासकारों का एक संप्रदाय, विशेष इतिहास का और इसके एक अंश के रूप में पुराण का प्रणयन तथा पुनर्लेखन करता रहा। सार्वभौमिक इतिहास के लेखन की यह परंपरा चौथी शताब्दी ईस्वी तक रही। बीच के शासन वंश पुराणों में सम्मिलित किए जाते हैं। इस समय तक महाभारत को संभवतः वह रूप प्राप्त हो चुका था जिसे समीक्षापूर्ण संपादन के फलस्वरूप इसको अब प्रदान किया गया है। पुराणों को अभी इस प्रकार का समीक्षापूर्ण संपादन नहीं किया जा सका है। मुख्य पुराण 18 माने जाते हैं, जिनमें प्राचीन इतिहास के लिए वायु, मत्स्य तथा मार्कंडेय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह सार्वभौमिक इतिहास सृष्टि के उद्भव तथा विकास एवं देवताओं से संबंध विभिन्न कथाओं से प्रारंभ होता है। हमारे अपने कल्प का इतिहास मनु वैवस्वत से प्रारंभ होकर भारत युद्ध तक के विभिन्न राजवंशों की चर्चा करता है। तत्पश्चात यह बाद के विभिन्न शासन वंशों का उल्लेख करता है। यह उल्लेखनीय है कि पुराणों का संशोधन मध्यकाल अथवा सामंत युग के प्रारंभ में हुआ और इस कारण इसमें राजा का समाज के रक्षक के रूप में निरूपण स्वाभाविक था। पुराणों में यथासंभव प्राचीन इतिहास को इस आदर्श का परिपोषण करते हुए दिखाने की प्रवृत्ति मिलती है। मगध साम्राज्य के पूर्व के विभिन्न सूर्यवंशीय एवं चंद्रवंशीय शासन वंशों तथा मगध साम्राज्य शासन वंशों के विषय में पुराणों में कुछ अनिश्चितता तथा अस्पष्टता मिलती है, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों से तुलना करके शुद्ध किया जा सकता है। सातवाहनों के बाद छोटे छोटे भूप्रदेशों पर शासन कर रहे राजवंशों का इतिहास अत्यंत अस्पष्ट रूप में मिलता है। कुषाण शासकों का, जिन्होंने सातवाहनों के साथ साथ लगभग 200 वर्षों तक राज किया, पुराणकार या तो चर्चा ही नहीं करते अथवा यह माना जा सकता है कि वे तुषार नाम से उल्लिखित हुए हैं। अन्य विदेशी वंशों को मलेच्छ अथवा बर्बर कहकर छोड़ दिया गया है। कुछ नाग वंशों का अपेक्षाकृत अधिक सहानुभूतिपरक उल्लेख हुआ है, किंतु सभ्यता के पुनर्जीवन की वास्तविक आशा पुनः विंध्य शक्ति द्वारा बाकाटक वंश की स्थापना द्वारा दिखाई पड़ती है। गुप्तों का उल्लेख केवल गंगा के दुआब पर शासन कर रहे एक गौण वंश के रूप में होता है। इस प्रकार हम चौथी शताब्दी ईस्वी एवं पुराणों में लिखित सार्वभौमिक इतिहास के अंत पर पहुँचते हैं। संभवतः यह तिथि इतिहास के अंतिम पुस्तकीकरण की तिथि है, यद्यपि कुछ अंशों में परिवर्तन बाद में भी होते रहे। बौद्ध इतिहास लेखन सिद्धांततः त्रिपिटकों में बुद्ध की जीवनी से संबद्ध विभिन्न घटनाओं का विवरण है। सूत पिटक में उनके उपदेशों का तथा विनय पिटक में संघ की स्थापना तथा उनके नियमों का संकलन है। इन ग्रंथों से तत्कालीन सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बुद्ध के मुख में रखे गए कुछ उपदेशों में प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं एवं परंपराओं की भी चर्चा मिलती है। जनसामान्य द्वारा निर्वाचित प्रथम राजा महासम्मत था, जिसे परिवर्तित बौद्ध टीका परंपरा में मनु से समकृत किया गया है। यह स्पष्ट है कि बुद्ध अथवा इन ग्रंथों के संकलनकर्ता उक्त सार्वभौमिक इतिहास परंपरा के कुछ रूपों से परिचित थे, जिस पर पिछले अध्याय में पुराणों के प्रसंग में चर्चा की जा चुकी है। बौद्धों की प्राचीन राजाओं के विषय में अधिक रुचि नहीं थी। नैतिक दृष्टि से आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत करने पर ही उनकी कहीं कहीं चर्चा हुई है। त्रिपिटक में चर्चित प्राचीन राजाओं में इच्छावकु, मांधारित, भरत, धृतराष्ट्र, सिब्बी तथा जनक के नाम मिलते हैं। विनय पिटक से वस्तुतः बौद्ध धर्म के इतिहास का लेखन प्रारंभ होता है। इसमें बुद्धकालीन घटनाओं के विवरण के अतिरिक्त परिनिर्वाण के बाद का भी इतिहास संकलित किया गया है। परिनिर्वाण के लगभग 100 वर्षों के पश्चात घटित द्वितीय संगति का संगीत का भी विवरण इसमें प्राप्त है। इसके बाद संघ कई संप्रदायों में विभक्त हो गया और विभिन्न संप्रदाय पृथक पृथक अपना इतिहास लेखन करने लगे और इन्हें त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं किया गया। अस्थवीरवाद संप्रदाय, जिसका मुख्य केंद्र अब श्रीलंका था, ने टीकाओं तथा वंशों के रूप में इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। वंशों में आचार्य शिष्य परंपरा की सूचियां दी गई हैं। इतिहास लेखन की इस परंपरा में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना का तथा इसके बाद का विवरण उपलब्ध है। दीप वंश तथा महावंश ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के विषय में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हैं। श्रीलंका की इस समृद्ध इतिहास लेखन की परंपरा के विपरीत स्वयं भारतीय बौद्धों द्वारा लिखे गए कुछ ही ग्रंथ प्राप्त हैं। इसका मुख्य कारण यहाँ इस धर्म का पतन था। इन भारतीय ग्रंथों की रिक्तता की कुछ पूर्ति चीनी तथा तिब्बती स्रोतों द्वारा होती है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका मूल केरल से प्राप्त हुआ। यह 8वीं शताब्दी तक का भारतीय इतिहास प्रदान करता है। यद्यपि इसका निरूपण रूपरेखात्मक ही है, यह नंदों, मौर्यों, गुप्तों, मैत्रकों, मौखरियों, पुष्पभूति तथा गोपाल के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ 17वीं शताब्दी तथा भूस्तन 18वीं शताब्दी इसके परिपूरक स्रोत हैं। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के इतिहास के लिए वसुमित्र, भाव विवेक, परमार्थ तथा विनीत देव की रचनाएं विशेष रूप से सहायक हैं। अंततः हम अवदान साहित्य पाते हैं, जिनमें अशोका अवदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः बौद्ध इतिहास लेखन के अंतर्गत प्राथमिक एवं गौण इतिहास लेखन के बीच विभेद किया जाना चाहिए। प्रथम वर्ग में वह साहित्य आता है जो न्यूनाधिक समसामयिक है तथा घटनाओं का पूर्वाग्रहों से मुक्त लेखन प्रस्तुत करता है, जबकि दूसरा वर्ग इस प्रकार की घटनाओं का परिवर्तित लेखन प्रस्तुत करता है, जिसमें इतिहास की अपेक्षा पुराण कथाओं के प्रति अधिक रुचि दिखाई पड़ता है। त्रिपिटक प्रथम वर्ग का साहित्य है। महावस्तु, निदान कथा, शाक्य मुनि बुद्ध रचित, ललित विस्तर एवं अश्वघोष रचित बुद्ध चरित इत्यादि बुद्ध की जीवनियां दूसरे वर्ग में आती है, जिसमें घटनाओं का निरूपण परिस्थिति परक ऐतिहासिक विवरणों के समान न होकर एक नए नैतिक प्रतिमान के संदर्भ में रखकर किया गया है। बौद्ध सिद्धांत के अनुसार सभी कर्मों में भावी जीवन के फल निहित हैं। इस प्रतिमान के प्रति मोह ने अनिवार्यतः परिवर्तित बौद्ध लेखकों को घटनाओं को इस प्रकार चुनने अथवा विकृत करने के प्रति उत्साहित किया कि बौद्ध नैतिकता के आदर्श को प्रोत्साहन प्राप्त हो। नैतिकता के प्रोत्साहन की इस प्रश्न के साथ ही परवर्ती लेखन में काव्य गुणों का समावेश का प्रश्न भी विचारणीय है। उदाहरणार्थ अश्वघोष इतिहास लेखक न होकर एक महान कवि है। तथ्य निरूपण पर इस बात का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जैन इतिहास लेखन एवं विक्रमादित्य की कथा। पौराणिकों तथा बौद्ध के अतिरिक्त जैन ग्रंथों द्वारा तीसरी इतिहास लेखन परंपरा का प्रकाशन होता है। बौद्ध की अपेक्षा जैन ग्रंथ बहुत बाद के हैं, यहाँ तक कि कुछ ग्रंथ महावीर भगवान महावीर से लगभग 1000 वर्ष बाद के हैं। आचारांग सूत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अंत प्राचीनतम है, जिसमें जीन के जीवन की कुछ घटनाओं की चर्चा है। बाद के ग्रंथों में हम पूर्ववत इतिहास से हटकर पुराण कथा लेखन के प्रति उन्मुखता प्राप्त पाते हैं। इसमें भी चक्रात्मक विकास प्रक्रिया की चर्चा है तथा कुछ ग्रंथों में प्राचीन सार्वभौमिक सम्राटों के नाम गिनाए गए हैं, मनुओं के भी नाम गिनाए गए हैं। कालांतर में इन ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर विभिन्न भाषाओं में काव्य ग्रंथों की रचना हुई। इनमें प्राचीनतम विमल रचित पद्मचरित 200 ईस्वी में है, जिनमें जैन सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में राम की कथा कही गई है। यह कथा वाल्मीकि की कथा से कुछ भिन्न है। जैनों ने ब्राह्मण इतिहास परंपरा के शुद्धियों को दिखाते हुए उनमें ज्ञात घटनाओं तथा चरित्रों को जैन रीतियों के रंग में रंगने का प्रयास किया। सभी अपने कर्म का फल भोगते हैं, अतः इनमें किसी अति मानवीय सत्ता के हस्तक्षेप का निराश है। 12वीं शताब्दी के रामचंद्र ने नल, राम, कृष्ण, हरिश्चंद इत्यादि प्रातिहासिक नाटक लिखे। हरिभद्र 12वीं शताब्दी ने पुराणों के विरोध में धूर्ताख्यान धूर्तों का इतिहास की रचना की। नंदी सूत्र तथा आवश्यक सूत्र में जीन के पश्चात आने वाले जैन आचार्यों के नाम दिए गए हैं। जैन धर्म का इतिहास बाद में भी लिखा जाता रहा, जिसका सर्वोत्तम दृष्टांत 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट प्रबंध है, जिसमें मौर्य काल तक के मगध सम्राटों की भी चर्चा हुई है। 9वीं शताब्दी तक तो जैन ग्रंथों में भारत के समान इतिहास के प्रति रुचि दिखाई पड़ती है, अर्थात वे मगध, सातवाहन, शक, गुप्त, कानकुब्ज शासन वंशों की बहुविधि चर्चा करते हैं। किंतु इसके पश्चात जैन मालवा, गुजरात, राजस्थान तक में ही सीमित हो गए एवं उन्होंने इन क्षेत्रों के इतिहास के लेखन में योगदान दिया। विक्रम संवत के संस्थापक विक्रमादित्य के तादात्म्य की समस्या भारतीय इतिहास की जटिलतम समस्याओं में रही है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 से 58 ईसा पूर्व में होता है। दूसरी ओर यह ज्ञात तथ्य है कि एकमात्र भारतीय राजा जो इस नाम से सुविज्ञात है था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने यह उपाधि धारण की थी। इस पुराण के कथा के वृत्तांतानुसार इस गुप्त शासकों ने भी शासकों को हराया था, किंतु इस घटना तथा संवत का स्थापना के बीच 400 वर्षों का अंतराल है। जहाँ तक कि 58-57 ईसा पूर्व में संवत के प्रारंभ का प्रश्न है, प्राचीनतम अभिलेख इसकी उत्पत्ति को मालवा गण से संबंधित करते हैं तथा वे किसी विक्रम का उल्लेख नहीं करते। मालवगण के लोग पहले पंजाब में थे, फिर कुछ दिन राजस्थान में रहकर वे अंततः मालवा प्रदेश में बसे, फलतः यह इसकी राजधानी उज्जैनी से संबद्ध हो गया। विक्रमादित्य से संबद्ध कथाओं का चक्र गौण इतिहास लेखन की प्रक्रिया की अंतिम अवस्था का प्रदर्शन करता है। ये सभी कथाएं अपने जननायक की वास्तविक तिथि से 500 शताब्दियों बाद की है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान गुप्त शासक था, जिसके व्यक्तित्व के विविध चिताकर्षक पक्ष विभिन्न स्रोतों से प्रमाणित होते हैं। उसके द्वारा शकों की पराजय राष्ट्रीय गौरव की घटना थी। कालांतर में वास्तविक जननायक एवं काल्पनिक नायक के रूप में परिवर्तित होकर रह गया। उसे एक आदर्श राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयास में ने उनके अस्तित्व की वास्तविकता के तथ्य को ढांप दिया। जैन ग्रंथों के अतिरिक्त बेताल, पंज, विंशति, सिंहासन, द्वात्रिशिका, माधवा, बाण, लका, मकंदला, माधवा, नल, कामन, माधवा, नल, काम, कंदला इत्यादि ग्रंथों में विक्रमादित्य के प्रेमी तथा शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व का संप्रकाशन हुआ। मध्यकालीन जीवन चरित्र लेखन बाण रचित हस्तचरित सातवीं शताब्दी कानकुब्ज के शासक हर्ष पर लिखी एक आख्यायिका है। बाण भार्गव कुल का था तथा इतिहास में रुचि उसे अपनी पारिवारिक परंपरा से प्राप्त हुई होगी, ऐसा सोचा जा सकता है। हर्षचरित इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य की श्रेणी में आता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी से काव्य उस क्षेत्र में अतिक्रमण करता दिखाई पड़ता है जो पहले इतिहास का क्षेत्र माना जाता था। इतिहास लेखन पर इस प्रवृत्ति के गंभीर प्रभाव पड़े। इन ऐतिहासिक काव्यों में प्रत्यक्ष तथ्य संप्रेषण के स्थान पर अप्रत्यक्ष तथा लक्षणात्मक अभिकथन मिलते हैं जिनका मूल उद्देश्य सौंदर्य शास्त्रीय प्रभाव उत्पन्न करना है। इस प्रकार ऊपर चर्चित गौण इतिहास लेखन के साथ ही प्राथमिक इतिहास लेखन विधा में भी तथ्य पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की सर्वोपरता प्रतिस्थापित होने लगी। बाण का अभिप्राय घटनाओं का यथारूप लेखन नहीं है अपितु अपने नायक हर्ष द्वारा एक विशिष्ट लक्ष्य की उपलब्धि है जिसमें विभिन्न घटनाएं अनिवार्यतः परिणत होती है। हर्ष के पूर्वज पुष्पभूति को श्री भाग्य की देवी श्री पुष्पभूति को श्री से यह वर प्राप्त हुआ था कि वह एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करेगा जिसमें हर्ष नामक सम्राट होगा और वह स्वयं उसकी सेवा में रहेगी। काव्य में नायक द्वारा अंत में किसी विशिष्ट स्त्री की प्राप्ति चरम लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतीक होती है। हर्षचरित में नायक की बहन राजश्री द्वारा, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, इस प्रतीकात्मकता का प्रतिबिंबन होता है। राजश्री मौखरी सम्राट से विवाह करती है। गौर तथा मालवा शासक मिलकर उस पर आक्रमण करता है जिसमें वह मारा जाता है। राजश्री जंगलों में भाग जाती है। हर्ष का बड़ा भाई राजवर्धन शत्रुओं को मार भगाने के उद्देश्य से प्रयाण करता है। सफल होने पर भी वह गौर शासक के षड्यंत्र का शिकार बनता है। हर्ष अनिच्छा से शासक बनता है और शत्रुओं से बदला लेने की शपथ लेता है। अपने सेना नायकों के नेतृत्व में वह एक सेना भेजता है और स्वयं अपनी बहन की खोज में निकलता है। वान के युद्ध के विवरण में कोई रुचि नहीं दिखाई है तथा केवल हर्ष द्वारा राजश्री की प्राप्ति, तदंतर उसके द्वारा राज प्राप्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके विवरण में संभवतः सत्य से दूर हुए बिना ही बाण अपने कथानक को काव्य शैली में प्रस्तुत कर सका है। ऐतिहासिक काव्य बागपति राज तथा पद्मगुप्त। हर्ष के एक शताब्दी पश्चात कानकुब्ज पर यशोवर्मन ने राज किया कुछ समय के लिए। वह एक प्रभावशाली शासक के रूप में उभरता है जिसने एक ओर मगध गौड़ और दूसरी ओर सिंधु पर आक्रमण करने वाले अरबों को पराजित किया। उसके दरबारी कवि बागपति राज ने उसके ऊपर गौड़वहू नामक काव्य की रचना की। ग्रंथ में उसकी विविध विजयों का उल्लेख है। अन्य कई स्रोतों कलहन कृत राज तरंगिणी में भी से भी यशोवर्मन द्वारा उत्तरी भारत के एक विस्तृत भूप्रदेश पर अधिकार प्रमाणित तो होता है, किंतु कालांतर में उसे कश्मीर के ललितादित्य से युद्ध करना पड़ा जिसमें वह पराजित हुआ। यह काव्य विवरणात्मक है एवं राजा के युद्धों की अपेक्षा उसके भोग विलासपूर्ण जीवन के ऊपर अधिक बल दिया गया है। यशोवर्मन को विष्णु का अवतार बताया गया है और इस कारण उसके द्वारा विश्व विजय बतलाना अनिवार्य सा था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में पद्मगुप्त ने मालवा के परमार शासक सिंधुराज के ऊपर नवसहसांक चरित नामक एक काव्य लिखा। जैसा कि पाठक ने दिखाया है, सत्य घटनाओं पर आधारित होने पर भी इसमें प्रेम कथा में परिवर्तित कर दिया गया है जिसमें राजा को नाग राजकन्या शशि प्रभा के साथ प्रणय करते दिखाया गया है। नायक की पूर्वज परंपरा के विषय में ग्रंथ में महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। परमार राजपूत कहे गए हैं। काव्य के 11वें सर्ग में सिंधुराज को उसके कुल की उत्पत्ति की कथा बतलाई गई है। यह घटना वैदिक काल में अर्बुद पर्वत पर घटी। विश्वमित्र जो पहले क्षत्रिय थे और बाद में ऋषि बने द्वारा वशिष्ठ की कामधेनु अपहृत कर ली गई थी। इस पर वशिष्ठ ने याज्ञिक अग्नि में आहुति डाली जिससे एक योद्धा उद्भूत हुआ। इसने गाय को पुनः प्राप्त कर लिया और वशिष्ठ ने उसे परमार शत्रुओं का संहारक संज्ञा प्रदान की। इसी से इस कुल के अन्य राजा उत्पन्न हुए। कालांतर में याज्ञिक अग्नि से परमारों की उत्पत्ति की कथा बड़ी लोकप्रिय हुई और अन्य राजपूत कुलों द्वारा भी अपना ली गई। पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी में वशिष्ठ द्वारा चार योद्धाओं प्रतिहार चालुक परमार तथा चहमान की उत्पत्ति का वर्णन है जो सभी राक्षसों से यज्ञों की रक्षा के प्रयोजन से उत्पन्न किए गए थे। यह एक परवर्ती कथा रचना है जिसमें मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा में प्रवृत्त तथा इस समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सचेष्ट राजस्थान के इन चार प्रसिद्ध राजपूत कुलों को एक साथ रखा गया है। चालुक्य तथा राष्ट्रकूट इतिहास लेखन। 6वीं शताब्दी में बागटकों के पतन के पश्चात चालुक्य शासन वंश प्रभुत्व में आया। 8वीं शताब्दी में वे राष्ट्रकूटों द्वारा पराजित हुए, किंतु 10वीं शताब्दी में चालुक्यों की एक शाखा पुनः प्रभुत्व में आई जिसने 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। इन शासन वंशों से संबंध विभिन्न शासकों के ऊपर विभिन्न ऐतिहासिक काव्यों की रचना हुई जिनमें कृष्ण तृतीय के ऊपर हलायुद्ध रचित कवि रहस्य 10वीं शताब्दी, अरिकेसरणी द्वितीय अर्जुन के ऊपर पंप रचित कन्नड़ भाषा में विक्रमा अर्जुन विजय उल्लेखनीय है। ये काव्य ग्रंथ दोहरे अर्थ वाले हैं, अर्थात मुख्य कथानक के साथ साथ एक इतर कथानक भी चलता रहता है। उदाहरणार्थ प्रथम में संस्कृत भाषाओं की क्रियाओं से संबंध कुछ जटिल प्रश्नों की व्याख्या भी प्रस्तुत करने का प्रयास है और पंप का काव्य महाभारत की कथा को पुनः देते हुए अपने नायक को अर्जुन से समीकृत करता है। किंतु इस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ विक्रमांक देवचरित है जिसे बिल्हन ने परवर्ती चालुक्य शासन विक्रमादित्य षष्ठ के ऊपर 11वीं शताब्दी लिखा। यह उल्लेखनीय है कि बिल्हन भार्गव कुल की एक शाखा विशेष सारस्वत से संबंध है था तथा कुछ चालुक्य शासक स्वयं को आंगिरस कुल की एक शाखा हारित से संबद्ध करते थे। उत्तराधिकार परंपरा का अतिक्रमण करते हुए विक्रमादित्य ने अपने ज्येष्ठ भ्राता का सिंहासन छीना था। बिल्हन का काव्य उसके इस कृत्य के औचित्य स्थापना का प्रयास प्रदर्शित करता है। कवि अपने नायक को भगवान शिव का प्रिय पात्र बनाता है। उसका बड़ा भाई सोमेश्वर दुष्ट शासक था जिसका विक्रमादित्य ने आत्म सुरक्षा के उद्देश्य से तथा ईश्वरीय आदेश के कारण वध किया। काव्य शैली के अनुरूप ग्रंथ में नायक के दिग्विजय, उसके द्वारा भागश्री की प्रतीक एक स्त्री विशेष की उपलब्धि का भी वर्णन है। बिल्हन के विवरण की बहुत सी सूचनाओं का अन्य अभिलेखकीय स्रोतों द्वारा प्रत्याख्यान होता है। ग्रंथ में तीनों भाइयों के अच्छे अथवा बुरे चरित्र का निर्धारण पूर्व नियति के फलस्वरूप निश्चित होता दिखाया गया है तथा इस सांख अध्यात्म शास्त्र के आधार पर व्याख्यित किया गया है। यह वस्तुतः एक धार्मिक इतिहास लेखन है जिसमें घटनाओं का निश्चयन मानवीय कर्मों द्वारा न होकर दैवी नियति द्वारा होता दिखाया गया है। स्वयं चालुक्य की उत्पत्ति में भी दैवी इच्छा कार्य करती दिखाई गई है। उन्हें ब्रह्मा से उनकी उत्पत्ति संभवतः इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि ये मूलतः ब्राह्मण थे जो बाद में क्षत्रिय कर्म में प्रवृत्त हो गए। अयोध्या के साथ संबंध स्थापन स्पष्टतः काल्पनिक है जो केवल उन्हें प्राचीन काल के साम्राज्य केंद्रों में से एक के साथ संबद्ध करने की इच्छा का परिणाम है। पाल इतिहास लेखन डैश। पाल शासक रामपाल विक्रमादित्य षष्ठ का समसामयिक था। संध्याकर नंदिन ने उसके जीवन पर रामचरित नामक काव्य की रचना की जो उसके पुत्र के शासनकाल में लिखी गई। यह काव्य ग्रंथ दो अर्थी है। इसमें मुख्य कथा के साथ रामायण की कथा भी कही गई है। इस प्रकार पुनः हम किसी समसामयिक शासन को किसी प्राचीन सूर्यवंशीय शासक के साथ संबद्ध करने का प्रयास देखते हैं। काव्य के प्रारंभ में पालों की उत्पत्ति का वर्णन है। तारानाथ सदृश बौद्ध लेखकों तथा अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि इस वंश का संस्थापक जनता द्वारा शासन करने के लिए चुना गया था। यह संभवतः ग्रंथकार को रुचिकर नहीं था और उसके दोहरे अर्थों से पालों की दोहरी पूर्वज परंपरा स्थापित होती है। एक के अनुसार वे सूर्य वंश से संबंध थे। इस परंपरा का उल्लेख के बाद लेखक सौढ़ढल द्वारा भी हुआ है, जो उन्हें मानधाता का वंशज बताता है। दूसरी कथा के अनुसार गोपाल का पुत्र धर्मपाल उसका औरस पुत्र न होकर सागरपाल नामक एक नाग राजा से उत्पन्न हुआ था। यह परंपरा भूस्तन तथा तारानाथ प्रभृत बौद्ध लेखकों को विस्तार पूर्ण रूप में ज्ञाप्त है। इसके बाद कवि सीधे रामपाल के पिता विग्रहपाल द्वितीय तृतीय पर आता है तथा कलचुरी शासक कर्ण के साथ उसके युद्धों की चर्चा करता है। विग्रहपाल के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र महिपाल द्वितीय शासक बना। इसने गलत जनापवादों के आधार पर अपने भाइयों को बंदी बना लिया। उसे शीघ्र अपने सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें वह मारा गया। संध्या कर नंदिन दूसरे भाई के विषय में मौन धारण करते हुए भीम के नेतृत्व में युद्ध कर रहे सामंत विद्रोहियों के विरुद्ध रामपाल के सफल अभियान का विवरण देता है। इस प्रकार साम्राज्य की पुनर्प्राप्ति के पश्चात काव्यात्मक शैली के अनुरूप रामपाल की कुछ विजयों की चर्चा है। लंबे शासनकाल के पश्चात उसने शासन भार अपने पुत्र राज्यपाल को सौंप कर पवित्र गंगा में जल समाधि द्वारा अपने जीवन का अंत किया। रामपाल के बाद उसके कई पुत्रों के शासनकालों का संक्षिप्त विवरण देते हुए अंततः कुमारपाल के शासनकाल के विवरण के साथ काव्य की समाप्ति की गई है। संध्याकार नंदीन का मुख्य अभिप्राय अच्छे तथा बुरे जैसा कि उनकी नीतियों से प्रदर्शित होता है, शासकों की पारस्परिक तुलना उपस्थित करना तथा इसके साथ साथ व्यंजना तथा शासकों को यह उपदेश देना कि उन्हें मंत्रियों परामर्शदाताओं तथा स्वयं उसके समान विद्वान तथा लेखकों के परामर्शों को मानना चाहिए। कश्मीर में इतिहास लेखन - कलहन - संध्या करनंदिन के कुछ ही वर्षों पश्चात कश्मीर में कलहन ने राज तरंगिणी की रचना की। वह प्रारंभ से लेकर अपने समय तक का कश्मीर का बृहद इतिहास लिखना चाहता था। उसने प्राचीन इतिहास परंपरा में लिखा, जिसमें बिलहन के समान लेखकों के विपरीत सौंदर्य शास्त्रीय आवश्यकताओं के प्रति बहुत कम छूट दी गई है। अपने इतिहास लेखन में उसने अन्य स्रोतों, अभिलेखों, मुद्राओं, दान पत्रों तथा प्राचीन स्मारकों का समीक्षात्मक बुद्धि का व्यवहार करते हुए उपयोग किया। उसने इस आदर्श का प्रतिपादन किया कि इतिहासकार को सर्वथा निष्पक्ष होना चाहिए तथा उसने स्वयं कश्मीर के इतिहास पर लिखित अन्य पूर्ववर्ती ग्रंथों का समीक्षात्मक अध्ययन किया। परवर्ती काव्य में व्यवहृत परंपरा के विपरीत पूरे काव्य में एक ही छंद का प्रयोग करने तथा लक्षणात्मक विवरणों का यथासंभव निराश करने पर भी कलहन ने काव्य के मूल सिद्धांत एक निश्चित रस विशेष की उत्पत्ति के लक्ष्य को सदैव अपने सामने रखा है। उन्होंने शांत रस चुना है। कलहन ब्राह्मण थे तथा संभवतः भार्गव कुल की सारस्वत शाखा से संबंध थे। वे एक मंत्री के पुत्र थे और इस प्रकार राजनीतिक मामलों तथा राजनीतिज्ञों के चरित्र से भली भांति परिचित थे। राजतरंगिणी किसी एक शासन वंश का इतिहास न होकर कश्मीर का समान इतिहास है। कलहन इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पूर्ववर्ती शासन वंशीय इतिहासों को भी अपना स्रोत बनाया है। उनका विवरण कश्मीर की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है, जिसे पुराणों में चर्चित मनु वैवस्वत की परंपराओं से संबद्ध किया गया है। कलहन का विवरण विक्रमादित्य द्वितीय, जिसने मातृगुप्त को सिंहासन पर बिठाया, के समय से बहुत कुछ विश्वसनीय होता दिखाई पड़ता है। इसके पहले प्रथमतः कुछ पौराणिक शासकों का उल्लेख है, जिसके बाद अशोक तथा कुछ कुषाण शासकों की चर्चा है। इनके तथा मातृगुप्त के बीच कई शासकों के नाम आते हैं जो प्रायः हुन समझे गए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः कश्मीर का स्वतंत्र इतिहास मातृगुप्त के समय से ही प्रारंभ होता है। इसके पूर्व वह कुषाण साम्राज्य तथा पहले मौर्य साम्राज्य का अंग था। कश्मीरी इतिहासकारों की क्षेत्रीय देशभक्ति ने इन ऐतिहासिक तथ्यों का गोपन करते हुए अपने शासकों की प्राचीनता को भारत युद्ध तक खोजने को प्रेरित किया। मातृगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारियों के विवरण के पश्चात कश्मीर पर हुन आधिपत्य का उल्लेख है। कारकोट शासन वंश के प्रथम शासक दुर्लभ वर्धन सातवीं शताब्दी का प्रारंभ के साथ हम निश्चित ऐतिहासिक भूमि प्राप्त करते हैं। बाद में कुछ कश्मीरी इतिहासकारों ने कलहन की कृति के पूरक ग्रंथ लिखे। इनमें 15वीं शताब्दी के मध्य में उत्पन्न जून राज तथा उनके शिष्य श्रीवर के नाम तथा 16वीं शताब्दी के प्राज्य भट्ट तथा सुक के नाम विशेष रूप उल्लेखनीय हैं। सिंधु तथा गुर्जर में इतिहास लेखन डैश सिंधु के मध्यकालीन इतिहास का जो कुछ भी शेष है वह चच नाम में प्राप्य है। यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमण के बाद लिखा गया। छठी सातवीं शताब्दी ईस्वी के शासकों के विवरणों के साथ साथ इसमें अरब आक्रमण का भी विवरण दिया गया है। गुर्जर प्रदेश गुजरात प्राचीन आनर्त अथवा सुराष्ट्र का मध्ययुगीन इतिहास जैन मठों से संबद्ध पुस्तकालयों विशेष रूपेण पाटन में भली भांति सुरक्षित है। 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र, जिसका नाम ऊपर परिशिष्ट पर्वन के संदर्भ में उल्लेखित है, ने द्वयाश्रय नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की, जो अंशतः संस्कृत एवं अंशतः प्राकृत में है। संस्कृत में लिखे गए प्रथम 20 सर्ग गुर्जर के चालुक्य राजवंश के संस्थापक मूलराज 942 ईस्वी से लेकर सिंधु राज 12वीं शताब्दी का प्रथमार्ध, जिसके समय में हेमचंद्र ने अपना कवि जीवन प्रारंभ किया तथा उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय तक का वृत्त प्रस्तुत करते हैं। प्राकृत में लिखे गए अंतिम 8 सर्ग कुमारपाल को अपना विषय बनाते हैं। दोनों ही भाग कलहन द्वारा प्रस्तुत प्रकार के विपरीत मुख्यतः काव्य शैली का अनुकरण करते हैं। अति मानवीय घटनाओं का बाहुल्य है तथा जैन कर्म सिद्धांत के अनुरूप घटनाओं की व्याख्या की गई है। व्याकरण के विभिन्न नियमों के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से घटनाओं में खींचतान तथा काल्पनिक घटनाओं का आविष्कार भी दिखाई पड़ता है। हेमचंद्र के विचारानुसार कुमारपाल के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा जैन धर्म का स्वीकरण था। उसने एक आदर्श जैन राज्य की स्थापना का प्रयास किया। 12वीं शताब्दी के अंत में सोमप्रभ ने चंपू शैली में जिन प्रतिबोध अथवा कुमार पाल प्रतिबोध लिखा, जिसमें यही वस्तु ली गई है। भीम द्वितीय 1178 से 1241 मूर्ख शासक था, किंतु इसका शासन वस्तुपाल नामक बुद्धिमान मंत्री, जो वणिक वर्ग से उत्पन्न एक जैन था, के हाथ में था। ब्राह्मण सोमेश्वर ने कृति कौमुदी में उसके जीवन को अपने काव्य का विषय बनाया। उसने एक अन्य काव्य सुरथोत्सव में पौराणिक कथा वस्तु अपनाए जाने पर भी काव्य के नायक सुरथ तथा भीम द्वितीय में आश्चर्यजनक सदृश्यता के कारण यह ग्रंथ समसामयिक घटनाओं के ऊपर एक रूपक जान पड़ता है। अरिसिंह नामक एक अन्य समसामयिक जैन गृहस्थ ने वस्तुपाल के ऊपर सुकृत संकीर्तन नामक काव्य की रचना की। अमर सिंह ने हेमचंद्र की अपेक्षा सत्य निरूपण निपुण कम है। बाल रचित बसंत विलास वस्तुपाल के ऊपर लिखित तीसरा ऐतिहासिक काव्य है। इसके अतिरिक्त जैनों द्वारा कई ऐतिहासिक महत्व के ग्रंथ प्रणीत हुए, जिन्हें प्रबंध कहा जाता है। इसमें प्राचीनतम प्राप्त ग्रंथ वस्तुपाल के समसामयिक जीन चंद्र द्वारा लिखित प्रबंधावली है। यह प्राचीन सातवाहनों के साथ साथ हाल के राजस्थानी चाहमनों तथा चालुक्य एवं परमारों की भी चर्चा करता है। मेरु तुंग रचित प्रबंध चिंतामणि में विभिन्न पूर्ववर्ती शासकों के विषय में कथाएं दी गई हैं और वह अरब आक्रमण की भी चर्चा करता है। कथाओं के रूप में होने के कारण उसकी सूचनाएं अप्रत्यक्ष रूप में मिलती हैं। 14वीं शताब्दी के मध्य में जय सिंह ने कुमार पाल तथा उसके गुरु हेमचंद्र के ऊपर कुमार पाल भूपाल रचित की रचना की कुमार पाल भूपाल चरित की रचना की चहमान इतिहास लेखन तथा राजपूत परंपराओं का विकास। लगभग 1192 में जयानक ने सपाददलच्छ देश उत्तरी राजस्थान के शासक पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की रचना की। जयानक कश्मीरी ब्राह्मण था और इस कारण संभवतः भार्गव कुलो उत्पन्न था। वह पृथ्वीराज को राम का अवतार मानता है और इस प्रकार उसे सूर्य वंश से संबद्ध करता है। पृथ्वी पर उसके अवतरण का प्रमुख प्रयोजन तुर्कों का विनाश था। जयानक पृथ्वीराज के तुर्कों पर विजय 1191 ईस्वी का विवरण देता है मानो वह निर्णयात्मक युद्ध हो, किंतु वस्तुतः वह निर्णयात्मक युद्ध नहीं था, क्योंकि शीघ्र बाद तुर्कों ने पुनः पंजाब पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ एवं मारा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जयानक अपने अपूर्ण काव्य को लेकर कश्मीर चला गया, जहां 15वीं शताब्दी में जूनराज ने इस पर एक टीका लिखी। जयानक काव्य के कई सर्गों में चाहमनों का पूर्ववर्ती इतिहास देता है। उसकी मुख्य कथा वस्तु यह है कि तुर्कों ने आक्रमण करके मंदिरों इत्यादि का विध्वंस किया, जिससे ब्रह्मा ने विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना की। विष्णु ने पहले चाहमान को उत्पन्न किया, जिससे चाहमान वंश उद्भूत हुआ। 7वीं शताब्दी से उसका इतिहास अधिक प्रमाणिक होने लगता है तथा अन्य स्रोतों एवं अभिलेखों से उसकी सूचनाओं का समर्थन देता है। संपूर्ण ग्रंथ काव्यात्मक शैली में है, जिसमें नायक संयोगिता के रूप में भाग्य देवी को प्राप्त करने की चेष्टा करता है और सफल हो जाता है। काव्य में कई स्थानों पर कवि सुलभ कल्पनाओं तथा अति मानवीय घटनाओं की प्रभुतता दिखाई पड़ती है। अपभ्रंश में लिखित पृथ्वीराज रासों को पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्र की रचना मानी जाती है। इसमें बहुत कुछ बाद में जोड़ा गया है और अब इस ग्रंथ की कई पांडुलिपियां प्राप्त हैं। इसमें अधिकांश भाग 14वीं शताब्दी के बाद के माने जाते हैं, किंतु किसी अंश के विषय की तिथि के बारे में निश्चयात्मक रूप से कह सकना कठिन है। 15वीं शताब्दी के अंत में एक जैन लेखक जयचंद्र ने संस्कृत में हम्मीर महाकाव्य लिखा। हम्मीर 1300 ईस्वी की शौर्यपूर्ण तथा दुखद कथा कहने से पूर्व यह चाहमानों के इतिहास का पर्यवेक्षण करता है। लेखक के अनुसार पृथ्वीराज के भाई हरिराज के समय तुर्कों द्वारा अजय मेरु के निर्णयात्मक पतन के पश्चात चाहमान सर्वथा विनिष्ट नहीं हुए और पृथ्वीराज के प्रपौत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में पुनः इस वंश की स्थापना की। हमीर इस प्रकार चहमानों से संबद्ध था। इस प्रत्यक्ष संबंध पर शंका प्रकट की गई है तथा इसे परवर्ती परिवर्धन माना गया है। जो भी हो, गोविंदराज के वंशजों ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चहमानों के रूप में शासन किया। संक्षेप में इनका इतिहास देखकर जयचंद्र हमीर के जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। 90 सर्ग में हमीर की विविध विजयों की चर्चा है। एक तुर्की स्रोत से हम जानते हैं कि 1290 में तथा उसके बाद कई अवसरों पर उसने तुर्कों को पराजित किया। नीसूरत खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना उससे पराजित हुई और तुर्क सेनापति मारा गया। अंततः 1301 में स्वयं अलाउद्दीन ने किले का घेरा डाला। हमीर के साथ राजपूत युद्ध करते मारे गए, जबकि स्त्रियों ने जौहर किया। 13वें सर्ग में कवि हमीर के स्वर्गारोहण की चर्चा करता है। चंद्रशेखर का सुरजन चरित्र 16वीं शताब्दी चहमान इतिहास पर लिखित एक अन्य काव्य है। संभवतः इससे भी बाद का पृथ्वीराज रासों का वह अंश है, जिसमें चहमान कुल की यागिक अग्नि से उत्पत्ति बताई गई है। इसमें इंद्र, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु द्वारा क्रमशः परमार, चालुक्य, प्रतिहार तथा चहमान कुलों की उत्पत्ति बताई गई है तथा उन्हें विभिन्न भूप्रदेशों का संरक्षत्व सौंपा जाते हुए दिखाया गया है। राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अपने इतिहास को ख्यातों में सुरक्षित रखा है। ये गद्य में लिखित इतिवृत्त है। इनका समय 16वीं शताब्दी के बाद का है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजाओं के ऊपर लिखे गए रास प्राप्य हैं, जिनमें उनकी पूर्वज परंपरा भी दी गई मिलती है, जिनकी ऐतिहासिकता सदैव विश्वसनीय नहीं है। जैसलमेरु के ख्यात अपने राजाओं को यादव कुल से संबद्ध करते हैं। मरुस्थली के ख्यात राष्ट्रकूट कुल का इतिहास पहले मांडलपुर में तथा 1459 के बाद उनकी नई राजधानी जोधपुर में प्रदान करते हैं। राजपूतों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुल मेदपाट मेवाड़ के गुहिल पुत्रों का कुल है। यह प्रदेश अवंती तथा मरुस्थली के बीच में पड़ता है। उन्होंने इस प्रदेश पर कम से कम 6वीं शताब्दी से आधुनिक काल तक शासन किया। इस प्रदेश के बहुसंख्यक रास तथा ख्यात प्राप्त होते हैं, जिनमें संभवतः प्राचीनतम उपलब्ध काव्य खुमान रास का प्राचीनतर अंश है। यद्यपि इसके पूरक ग्रंथ प्रताप सिंह 16वीं शताब्दी के समय लिखे जाते हैं रहे। कुछ परिवर्तित गुहिल पुत्रों पर कुछ पृथक काव्य ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे जगत सिंह के ऊपर जगद्विलास, राज सिंह के ऊपर राज प्रकाश तथा राजविलास एवं जय सिंह के ऊपर जय विलास। यह सभी शासक 17वीं शताब्दी में हुए थे। यह उल्लेखनीय है कि 14वीं शताब्दी से गुहिल पुत्र शासन वंश सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा था। अंबावती, आमेर, जयपुर। राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा सांस्कृतिक इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ की ख्यातों की प्राचीन नायकों में पृथ्वीराज 1500 तथा मानसी मानचरित का नायक उल्लेखनीय है। जयसी द्वितीय 1699 से 1743 एक विद्वान शासक था, जो अपने कार्यों तथा अनुसंधानों की महत्वपूर्ण दैननिंदिनी रखता था। इसका शीर्षक कल्पद्रुम है, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। ईश्वरी सिंह के ऊपर समसामायिक कवि कृष्ण शर्मन लिखित ईश्वर विलास एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है। जयपुर के कच्छ वाहा शासन वंश के ऊपर एक परवर्ती काव्य सीताराम का जय वंश है। यह 1830 में लिखा गया तथा संस्कृत भाषा में है। इस शासन वंश के ऊपर अन्य कई काव्य तथा इतिवृत्त लिखे गए। इस प्रसंग में हम तुर्कों द्वारा पारसी भाषा में लिखे इतिवृत्तों का उल्लेख कर सकते हैं। भारतीय सभ्यता के प्रति उनका दृष्टिकोण नकारात्मक प्रकार का है, क्योंकि इनमें सुरक्षा के स्थान पर इसके विनाश का लेखन अभिप्रेत है।